ये आकाशवाणी है। अब आप शशांक कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए कहा है कि भारत को अपनी विरासत पर गर्व और देश नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ने आश्चर्य से देखा कि किस तरह करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पवित्र संगम में एकत्र हुए, जबकि उन्हें कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। इसके बावजूद करोड़ों श्रद्धालु स्वेच्छा से महाकुंभ आए और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि ये आधुनिक प्रबंधन प्रवेशरों और नीति विशेषज्ञों के लिए एक अध्ययन का विषय है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि महाकुंभ के लिए 16,000 से अधिक रेलगाड़ियां संचालित की गईं। प्रयागराज जंक्शन में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रयागराज से 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने रेलगाड़ियों से यात्रा की। श्री वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ के लिए 21 से अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए और इस महाआयोजन में सभी विभागों का पूर्ण सहयोग रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रयागराज में दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ कल महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ संपन्न हो गया। 45 दिन के इस विराट आध्यात्मिक आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी को अपनाने और इसके उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने भाषा को देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बांधने वाला सूत्र बताया। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया। श्री सिंह ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में रक्षा मंत्रालय के राजभाषा विभाग के प्रयासों की प्रशंसा की। पत्रिका में सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान पर कविताओं के साथ साथ सरकार की नीतियों पर मंत्रालय के कर्मियों के लेख शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर सभी चुनौतियों के बावजूद भारत विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में सुश्री सीतारमन ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्रीकरण के साथ अनेक चुनौतियां सामने आ रही हैं। वैश्विक व्यवस्था विकसित देशों द्वारा निर्धारित नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापार और प्रौद्योगिकी नई विश्व व्यवस्था के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारत को इसमें प्रतिस्पर्धा करना होगा। सुश्री सीतारमन ने कहा कि विकसित देशों को भी प्रौद्योगिकी और प्रतिभा की आवश्यकता है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीजीए की रिपोर्ट पर सीएजी की रिपोर्ट पर आज फिर से चर्चा शुरू हुई। भाजपा विधायक शशि सतीश उपाध्याय ने कहा कि रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि आबकारी नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व का नुकसान हुआ। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार 5 श्रेणियों में प्रदान किए गए, जिनमें वकालत, अभिनय, विचार और आजीवन पशु सेवा शामिल है। श्री बघेल ने कहा कि ये पुरस्कार नागरिकों में जागरूकता को बढ़ाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू ने कहा है कि मुंबई में 1 से 4 मई तक आयोजित होने वाली विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लोगों को एक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने आज बेंगलुरु में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एवीजीएस सेक्टर के लिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जाजू ने कहा कि सम्मेलन कंटेंट क्रिएटर्स और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को एक साथ आने और देश में एवीजीसी क्षेत्र के लिए विकास के अवसर सृजित करेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 98 सत्र की 7वीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर एक विफल देश बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान के नेताओं पर अपने सैन्य आतंकवादी परिसर से झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच रद्द हो गया। बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका। दोनों टीमों में अंक बांटे गए। दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी हैं। उधर बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से गुजरात जॉइंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।